मित्रों, हर रविवार की तरह अब हम फिर तैयार हैं पठामी संस्कृतम कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने के लिए। रेडियो मधुबन सुनने वालों के सामने मैं लीना महेंदले एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम एक बहुत सुंदर श्लोक से आरंभ करेंगे। यह श्लोक बहुत ही सरल है, तुमने कई बार सुना भी होगा और इसका अर्थ समझना भी बहुत ही सरल है। आओ देखते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यहाँ तुमने देखा कि विष्णु के लिए यह स्तोत्र है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि अंतिम पंक्ति में कहा गया है वंदे विष्णुम, मैं विष्णु की वंदना करती हूँ। लेकिन इस विष्णु के जो अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, देखो कितना सुंदर है। कहते हैं शांताकारम, इनका आकार एकदम शांत है। भुजग शयनम, और ये शेषनाग पर लेटे हुए हैं। भुजग अर्थात शेषनाग, तो भुजग शयनम जो शेषनाग पर लेट लेट करके ही विश्राम करते हैं। पद्मनाभम, इनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। सुरेशम, जो देवताओं के ईश्वर हैं। विश्वाधारम, जो विश्व के आधार हैं। गगन सदृशम, जो आकाश की भांति नीले हैं, अपार हैं, गहन हैं, विस्तृत हैं और सर्वसमावेशक हैं। तो इस प्रकार गगन की उपमा, आकाश की उपमा विष्णु को दी जाती है, गगन सदृशम। मेघवर्णम, ये श्याम बादल के रंग के हैं। शुभांगम, इनके सारे ही अंग अत्यंत शुभ चिन्हों से युक्त हैं, शुभांगम। लक्ष्मीकांतम, ये लक्ष्मी के पति हैं। कमलनयनम, इनकी आंखें कमल की भांति सुंदर हैं। योगी भीर ध्यान गम्यम, योगी इनका ध्यान करते हैं लेकिन फिर भी ये अगम्य रहते हैं उनके लिए। योगी बहुत ध्यान करते हैं ताकि इनका कुछ आर पार समझ में आए, लेकिन ये उनके लिए अगम्य रहते हैं। अर्थात केवल तपश्चर्या करने से ये अगम्य ही रहेंगे, उस तपश्चर्या के साथ भक्ति भी चाहिए, कुछ ज्ञान भी चाहिए इत्यादि। योगी भीर ध्यान गम्यम, योगी ध्यान करते रहें फिर भी ये उनके लिए अगम्य ही रहते हैं। वंदे विष्णुम, ऐसे विष्णु को मेरा नमस्कार है जो भव भयहरम, इस संसार के सभी भयों से मुक्ति दिलाते हैं, सभी भयों का हरण करते हैं। सर्वलोकैकनाथम, और सर्वलोकों के ये जो एक ही नाथ हैं, ऐसे विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो मित्रों, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण में धातुओं के जो विभिन्न रूप हैं और जिनका परिचय लकारों से मिलता है, उन लकारों को हम सीख रहे थे। और पिछले अध्याय में हमने तीन जो सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यत और सामान्य भूतकाल के जो तीन लकार हैं उनका परिचय लिया। आज हम एक मजेदार लकार का परिचय लेंगे। यह लकार है लिट। लिट लकार भी भूतकाल को ही दर्शाता है, लेकिन ऐसा भूतकाल जो किसी बहुत पुराने जमाने की बात कही गई हो या ऐसी बात कही गई हो जो कहने वाले ने स्वयं तो देखी नहीं, परोक्ष रूप से सुनते सुनाते उसने समझी है, ऐसे स्थान पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए जाहिर है कि मैं स्वयं के विषय में अगर कुछ कह रही हूँ, अर्थात उत्तम पुरुष के विषय में मैं अगर कुछ कह रही हूँ, तो मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वह परोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए हालांकि लिट लकार का उत्तम पुरुष का रूप भी संस्कृत ग्रामर के नियम में याद करवाया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग प्रायः नहीं होता है। यही बात मध्यम पुरुष के लिट लकार पर भी लागू होती है, लेकिन प्रथम पुरुष अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति बखान कर रहा हो या किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बखान हो रहा हो तो वहाँ लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और इस लिट का रूप बड़ा मजेदार होता है, इसलिए हम आज पहले इसको पढ़ रहे हैं। तो लिट लकार को परोक्ष भूत या पूर्ण भूत भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरे लकारों की अपेक्षा लिट लकार में पीछे एक अक्षर लगाया जाता है जो कि जोर के लिए समझो या एम्फसिस के लिए है। और यह कौन सा अक्षर लगेगा यह अगले धातु के वर्णमाला के अनुरूप उसका चुनाव होता है। जैसे धातु है भव अर्थात होना, तो हमने देखा कि लंग लकार अर्थात सामान्य भूतकाल में हमने कहा अभवत, अभवताम, अभवन, लेकिन लिट लकार में प्रथम पुरुष के जो तीन रूप होंगे वो रूप होंगे बभूव, बभूवतुहु, बभूवुहु। तो देखा कि भूव के पीछे एक दूसरा अक्षर लग गया ब, जो उसमें एक जोर लाता है या एक बहुत पिछले बात का वर्णन या जो परोक्ष रूप से देखा गया इस बात का वर्णन करने के लिए यह अलग अक्षर लगता है। तो हम लंग लकार के साथ तुलना करके कुछ लिट लकारों को पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं लिख अर्थात लिखना, इसका लंग लकार है अलिखत, लेकिन लिट लकार हो जाएगा लिलेख। अश्रुणोत अर्थात उसने सुना, लेकिन लिट लकार में हो जाएगा शुश्राव अर्थात आगे शुरू आने के बाद पीछे लगने वाला अक्षर जो है वह श चुना गया है। पृच्छ अर्थात पूछना, तो अपृच्छत उसने पूछा, लेकिन लिट लकार हो जाएगा पपृच्छ। इसी प्रकार दृश शब्द है देखने के लिए जिसका लंग लकार है अपश्यत, लेकिन लिट लकार का रूप हो जाएगा ददर्श। पत अर्थात गिरना, तो अपतत ये हो गया सामान्य भूतकाल अर्थात लंग लकार, लेकिन लिट लकार हो जाएगा पपात। इसी प्रकार अपठत, पपाठ, अपृच्छत, पपृच्छ। द भी हमने देखा कि कहीं कहीं द भी लगता है, जैसे दृश शब्द के लिए अपश्यत, लेकिन लिट लकार है ददर्श। इसी प्रकार अददात अर्थात उसने दिया और लिट लकार हो गया ददौ। उदतिष्ठत इसका लिट लकार हो गया उत्तस्थौ। अतिष्ठत वह रुक गया, इसका लिट लकार है तस्थौ। अजानात जानामि अर्थात जानना, तो अजानात का लिट लकार हो गया जज्ञौ, तो यहाँ पीछे ज अक्षर लग गया। अचरत, लेकिन अचरत के लिट लकार में पीछे च लगेगा, तो ये हो गया चचार। इसी तरह अकरोत, तो क के पीछे भी च ही लगेगा चकार। अकरोत अर्थात उसने किया चकार अर्थात किसी करने की बात के लिए कहा गया है चकार। अगृह्णात, अब यहाँ ग है तो इसके पीछे भी लिट लकार में है जग्राह। अमिलत मिमेल, तो इस प्रकार मैंने याद रखने का प्रयास किया था। अगले तीन लकारों के विषय में मैं अगली बार बताऊंगी, क्योंकि आज हमारा समय समाप्त होता है। इन लकारों को हम विस्तार से और धीरे धीरे एक एक हमारे कार्यक्रम में पढ़ते चलेंगे। आज मैं आपसे अनुमति लेती हूँ, सबको नमस्कार। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, पढ़ते रहिए संस्कृत, मुस्कुराते रहिए।